السلام علیکم، یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ پروگرام میں جہاں رنگ میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہیں انجم ہرن گل۔ آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے عالمی عدالت انصاف میں کلبھوشن جادھو کیس کا فیصلہ، اس فیصلے کے پاکستان اور بھارت کے تعلقات پہ ممکنہ اثرات، اس پس منظر میں گفتگو ہوگی، اور اسی میں ہم امریکہ کی طرف سے اس بیان کا بھی تذکرہ کریں گے جس میں دونوں پڑوسی ملکوں کے درمیان پبلک ٹو پبلک یا پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ یعنی عوامی رابطوں کی تحسین کو داد تحسین دی گئی ہے۔ کرتارپور بارڈر کے راہداری کے پس منظر میں پروگرام کا ہمارا جو اگلا سیگمنٹ ہے اس میں ہم گفتگو کریں گے، پاکستان کے اندر جماعت الدعویٰ کے سربراہ حافظ سعید، ان کو گرفتار کیا گیا ہے ٹیررزم فنانسنگ کیس میں، یعنی دہشت گردی کی مالی معاونت کے مقدمے میں، اور یہ گرفتاری ایسے وقت میں آئی ہے جب ایک طرف تو کلبھوشن جادھو کا فیصلہ ہو رہا ہے اور دوسری طرف پاکستان کے وزیراعظم عمران خان امریکہ کا دورہ کرنے والے ہیں، جہاں متوقع طور پہ وہ فائنانشیل ایکشن ٹاسک فورس کے ریفرنس میں پاکستان کی جو ریٹنگ ہے وہاں پہ وہ چاہیں گے کہ کچھ فیورز ان کو حاصل ہو سکیں۔ پروگرام کا ہمارا تیسرا سیگمنٹ، اس میں گفتگو کریں گے پاکستان کے اندر ٹیکس نیٹ کو، ٹیکس کے دائرہ کو وسیع کرنے کی کوششیں، وزیراعظم عمران خان کا ایک بار پھر بزنس کمیونٹی سے خطاب، گوجرانوالہ میں موجود تھے اور اس بارے میں انہوں نے ملکی معیشت کے بارے میں گفتگو کی ہے، اس پہ بات کریں گے، اور آخر میں ورلڈ کپ کا اب جو فال بیک ہے وہ چیف سلیکٹر پاکستان کے انضمام الحق، انہوں نے مستعفی ہونے کا اعلان کیا لیکن اپنی مدت پوری کرنے کے بعد جائیں گے، تو اس پہ بھی بات ہوگی۔ چلتے ہیں پروگرام کے پہلے حصے کی جانب۔ اب سے کچھ لمحے پہلے عالمی عدالت انصاف کے جج عبدالقوی احمد یوسف نے کلبھوشن جادھو کے اس کا فیصلہ سنایا ہے۔ کلبھوشن جادھو پاکستان کے دعوے کے مطابق بھارت کے جاسوس ہیں جو پاکستان کے اندر دہشت گردی میں ملوث تھے، اور پاکستان کی فوجی عدالت انہیں سزائے موت سنا چکی ہے، پھر اس فیصلے کو چیلنج کیا۔ بھارت نے بین الاقوامی عدالت انصاف کے اندر، عالمی عدالت انصاف کے اندر، اور وہاں پہ آج یہ فیصلہ سنایا گیا ہے۔ فیصلے میں بھارت کی طرف سے پاکستان کی فوجی عدالت کے فیصلے کو منسوخ کرنے کی درخواست ہو یا کلبھوشن جادھو کی رہائی کی درخواست ہو، اس پلی کو قبول نہیں کیا گیا ہے، جبکہ پاکستان سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ وہ اس فیصلے کو ریویو کرے اور بھارت کو کونسلر رسائی دے جو کہ عالمی قوانین کے مطابق ہے اور اس سے انصاف کے تقاضے پورے ہوتے ہیں۔ عدالت نے کلبھوشن جادھو کے بارے میں کہا کہ ظاہر ہے وہ بھارت کے شہری ہیں اور ویانا کنونشن کے تحت پاکستان پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ جادھو کو کونسلر رسائی دے، کیونکہ پاکستان بھی ویانا کنونشن کا ممبر ہے اور ویانا کنونشن جاسوسی کے الزام میں گرفتار ملزموں کو کونسلر رسائی سے نہیں روکتا ہے۔ عالمی عدالت نے فیصلہ دیا ہے اور اس کے دونوں طرف پاکستان اور بھارت کے میڈیا پہ اگر ایک نظر ڈالیں تو دونوں طرف میڈیا جو ہے اس فیصلے کو اپنے حق میں سمجھ رہا ہے، اور پاکستان کا یہ خیال ہے کہ پاکستان کی جیت ہوئی ہے، بھارت کا میڈیا یہ سمجھتا ہے کہ ان کی جیت ہوئی ہے، لیکن جو بین الاقوامی قوانین کے ماہرین ہیں وہ کیا کہتے ہیں، ان سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اور پھر اس کے اوپر گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ لندن سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں مینچسٹر سے بیرسٹر امجد ملک صاحب، ایسوسیشن آف پاکستانی لائرز ہیں اور نیشنل سیکیورٹی ایشوز ہوں، ہیومن رائٹس کے ایشوز ہوں، اس کے اوپر ان کی ایکسپرٹیز ہیں۔ بھارت سے ہمارے ساتھ ہیں ارشی تھرکھی، ایک معروف لائر ہیں اور اسپیشلائزڈ ہیں انٹرنیشنل لا کے اندر، اور ان کے ساتھ ہم بات کریں گے۔ ریتل جوشی بھارت کے اندر پاکستان وائس آف امریکہ کی کورسپونڈنٹ ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ کچھ دیر بعد مشتاق احمد میر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، سابق سفیر اور ایکسپرٹ ہیں انٹرنیشنل افیئرز کے۔ بیرسٹر امجد ملک صاحب، آپ یہ بتائیے گا کہ آج ہیگ میں جو یہ فیصلہ سنایا گیا ہے، ظاہر ہے اس کے اندر بہت ساری ٹیکنیکلٹیز ہیں، ایک عام میڈیا مین کی حیثیت سے جب ہم اس کو دیکھ رہے تھے سو کئی پلیز ایسی تھیں جو ہمیں سمجھ آ رہا تھا کہ کچھ جو پٹیشن کے اندر بھارت کے ہیں کچھ پوائنٹ آف ویو ہیں وہاں پہ ان کو ریجیکٹ کیا گیا، کچھ پاکستان کا جو نقطہ نظر تھا کئی ایک شکوں پہ اس کو مسترد کیا گیا، سو کس طرح کا یہ ڈیسیجن ہے، اور آپ سے میں چاہوں گا کہ آپ اس کو تھوڑا سا ایلیبوریٹ بھی کریں اس فیصلے کو کہ عدالت نے ایکچولی کہا کیا ہے۔
بہت شکریہ، میں سمجھتا ہوں کہ 3 مارچ 2016 کو پاکستان کی حراست میں ایک شخص آتا ہے جس کو پاکستان کلیم کرتا ہے کہ وہ دہشت گرد ہے اور جاسوس ہے، اور اس کے اوپر وہ ان سے کنفیشنری سٹیٹمنٹ لیتا ہے اور مطلع کرتا ہے بھارت کو کہ آپ کا ایک شہری ہماری حراست میں ہے، جس کو وہ کلیم کرتے ہیں کہ وہ ایک کمانڈر ہے اور نیوی کمانڈر ہے اور وہ دہشت گردی میں ملوث تھا، اور اس نے اعترافی بیان بھی کیا ہے، اور انہوں نے اس کو بتا لیں کہ بتا بعد احتجاج بھی کیا، اور احتجاج کرنے کے بعد اس کا جو ہے ٹرائل ملٹری کورٹ میں چلایا اور اس کو سزا دی۔ بھارت نے سزا کے بعد عالمی عدالت سے رجوع کیا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں، اور کلیم بیسیکلی یہ کیا کہ ہمیں ہمارے شہری سے एक्सेस नहीं देगी। वियना कन्वेंशन आर्टिकल 36 कहता है कि अगर आपका दो अगर आप सिग्नेटरी हैं 1963 के कन्वेंशन के तो आप बाउंड हैं कि एक दूसरे के शहरी को बताएं उसके राइट और एक्सेस दें एक दूसरे को अम्बेसी के जरिए मिलने की।
सही।
भारत ये दरखास्त लेके आईसीजे में गया कि हमें काउंसलर एक्सेस नहीं दी गई, देन एज अ रिजल्ट कि वो सजा हो गई है और सजा को मुअत्तल करें और हमारे शहरी को बाइज्जत बरी करें और हमारे हवाले करें और सेफ पैसेज दें। आईसीजे ने क्योंकि पाकिस्तान ने उनको बता दिया कि आपका एक शहरी हमारी हिरासत में है और क्योंकि भारत ने एक्नॉलेज भी कर लिया कि हाँ हमारा एक शहरी आपकी हिरासत में है, तो उन्होंने इसको बेस बना के आर्टिकल 36 के तहत फैसला दिया है कि काउंसलर एक्सेस बनती थी कुलभूषण यादव या हुसैन मुबारक पटेल जो भी उसका असल नाम है उसको बताया जाना चाहिए था कि आप अपने जिस मुल्क से तल्लक रखते हैं उसके सफारतखाने से रजू कर सकते हैं और सफारतखाने को बताया जाना चाहिए था जिस मुल्क से वो तल्लक रखते हैं कि आपका एक शहरी हमारी हिरासत में है और आप उनके साथ काउंसलर एक्सेस कर सकते हैं ताकि बाद में वो उनकी डिफेंस टीम या जो भी उसके साथ मामला करना चाहे वो उसका डिफेंस करे या जो वो अपनी मर्जी का वकील करके लड़े। पाकिस्तान ने दहशत गर्दी को मद्देनजर रखते हुए वो विद होल्ड किया और यही प्ली ली, एक के ज्यूरिस्डिक्शनल इशू और दूसरा के आप ये जो दो तरफा मामला है उसमें नहीं आ सकती आईसीजे और ज्यूरिस्डिक्शनल इशू के लिए हमने दहशत गर्दी के तनाजर में और एस्पियनाज के तनाजर में वो एक्सेस नहीं दी और जो आलमी अदालत है उसने बाकी चीजें कन्विक्शन को ओवरटर्न करना सेंटेंस को ओवरटर्न करना बाइज़त रहाई और उनको हवालगी वो मुस्तरद किए लेकिन उन्होंने कहा है कि आर्टिकल 1963 के कन्वेंशन के तहत क्योंकि दोनों सिग्नेटरी हैं तो मामला हमारे पास ही आता है क्योंकि
अब ये तो ये रिव्यू होगा या कम्प्लीटली एक नए सिरे से मुकदमे की समाअत होगी कौंसलर एक्सेस के बाद और ये रिव्यू का तयन किस फोरम पे होगा? पाकिस्तान की हाई कोर्ट कर सकती है? तज़किरा किया है जज साहब ने कि पाकिस्तान की हाई कोर्ट जो है अगर वो इसको रिव्यू करे तो
नहीं। देखिए मेरे ख्याल में तो आखिरी मरतबा आलमी अदालत ने 1999 में जब पाकिस्तान ने क्लेम किया था कि पाक बारिया के जहाज को निशाना बनाया था और लोग उसमें 16 के करीब लोग शहीद हुए तो वो आईसीजे ने उस मामले की दो तरफा मामले में इंटरफियर नहीं की। यहाँ मेनली इशू यही है कि आर्टिकल 36 के तहत काउंसलर कन्वेंशन नहीं दी गई। अब पाकिस्तान और भारत ने उन्होंने एक्चुअली बाल दोनों के कोर्ट में फेंकी है कि आप दोनों आपस में बात करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, आप फैसला करें कैसे रेगुलेट करना है आपका शहरी, आपने बात करनी है उससे कि नहीं करनी
है। अब ये नहीं है, ये कि ये
काम है कि वो जजमेंट के रिजल्ट के सिलसिले में उनसे रजू करें आपस में भी बैठ के तय करें को सीबीएम कोई एसओपी मुतय्यन करें एक दूसरे के शहरी एक दूसरे के क्रॉस बॉर्डर होता रहता है इनके मचेरे इधर जाते रहते हैं कई शहरी इधर उधर गुम हो जाते हैं या आप एक एसओपी तैयार करें कि कैसे आपने इसको रेगुलेट करना है।
यानी इसमें अगेन एक बार फिर ये गुंजाइश निकलती है कि दोनों मुल्क जो है वो सियासी तौर पर एंगेजमेंट के साथ भी इसको हल कर सकते हैं जैसे हमें भारत के पायलट की रिहाई का मामला नजर आया। जी हमारे साथ हैं भारत से हमें ज्वाइन कर रखा है अर्षी तिर्की ने और रितुल जोशी भी हमारे साथ हैं। अर्षी आप हमें जरा बताइएगा कि आपने इस डिसीजन को सुना होगा, आप इसको कैसे डिफाइन करेंगी दोनों मुल्कों के नुक्ते नजर से, कहाँ किसकी किसके मौकफ की जीत हुई है, कहाँ किसका मौकफ कमजोर पड़ा है?
इस फैसले को जहाँ तक देखेंगे तो ये काफी हद तक इंडिया भारत के फेवर में है और जहाँ तक पाकिस्तान का देखेंगे तो फिर जो आईसीजे के फैसले में उन्होंने जो सुझाव दिया है कि ये इस फैसले का जो पाकिस्तान का जो न्याय अदालत है फैसले का रिव्यू एंड रिकंसिडरेशन होगा, मतलब पाकिस्तान उस फैसले को समीक्षा और पूर्ण विचार देगा, तो फिर इस हद तक कुलभूषण यादव का आगे क्या होगा वो एग्जैक्टली पता नहीं है।
सही।
पर जहां तक वियना कन्वेंशन के अंदर जो भी राइट्स है जो भी अधिकार है हमारे तो वो हमारे फैसले में ही डिसाइड किया गया है।
सही। रितुल आप ये बताइएगा अगर हम इस वक्त पाकिस्तानी मीडिया हमारे सामने है उसके ऊपर नज़र डालें तो साफ ये कहा जा रहा है कि भारत आलमी अदालत में ये मुकदमा हार गया है। मैं इंडियन न्यूज़पेपर्स को देख रहा था वहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू था इंडिया का जो मौकफ था उसकी फतह हुई है वो उसकी जीत हुई है। सो भारत का मीडिया इसको किस तरह से बयान कर रहा है?
बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने बताया पूरा मीडिया असद इसको ऐसे ही देख रहा है, भारतीय मीडिया जो है कि ये पूरी तरह से इंडिया की विक्ट्री है, डिप्लोमेटिक विक्ट्री है। अब क्यों है उसमें उनका कहना है कि पहली बात जो कॉन्सुलर एक्सेस की बात भारत बार बार मांग कर रहा था उसे पाकिस्तान को मानना पड़ा, और अभी बस अब से आप लोगों से बात करने से कुछ देर पहले ही एनईए का जो स्टेटमेंट आया है उन्होंने भी यही बात कही है कि कॉन्सुलर एक्सेस की हमारी डिमांड को माना गया और ये भी साबित हुआ है कि पाकिस्तान वायलेट कर रहा था बार बार वियना कन्वेंशन को। तो और भारत के अगर आप डिफेंस मिनिस्टर के बयान को देखेंगे उन्होंने भी यही चीज दोहराई है कि भारत की जीत है। तो कुल मिलाकर हर तरफ से, और जो कि बड़ा बड़ी लाजमी बात भी है कि हर कंट्री अपनी इसी तरह से पेश करेगा कि हमारी जीत हुई है, और मीडिया इसको ये कहता है कि क्योंकि 15-1 से ये वर्डिक्ट भारत के फेवर में गया, दूसरा एग्जीक्यूशन पे स्टे बरकरार है और मामले का रिव्यू होगा, अब दोबारा इसको अदालत में भेजा जाएगा। तो इस लिहाज से भारतीय मीडिया इसको अपनी जीत,
ठीक है, रिव्यू के बारे में क्या अंडरस्टैंडिंग है कि नए सिरे से मुकदमा चलेगा या ऑलरेडी जो फैसला हुआ है उसको रिव्यू करेगी कोई और अदालत, कोई और फोरम?
देखिए इस पे अभी तक फिलहाल कोई क्लैरिटी नहीं है, लेकिन एक सेगमेंट है जो यही कह रहा है कि जो मिलिट्री कोर्ट का ऑर्डर आया था उसी को रिव्यू किया जाएगा, और अब क्योंकि जाधव के पास कॉन्सुलर एक्सेस होगी और जब एक बार कॉन्सुलर एक्सेस आ जाती है तो फिर जो भी मुल्क इन्वॉल्व होता है वो फिर उसको एक लीगल रिकॉर्ड भी देगा, लीगल असिस्टेंस दी जाएगी, तो शायद अगली बार जब ये मामला अदालत में जाएगा तब मुकदमा कोई दूसरी शक्ल ले सकता है, ऐसा भारत में एक व्यू बन के सामने आ रहा है।
अर्शी आप हमें ये बताइएगा कि भारत का ऑफकोर्स इसके अंदर एक डिमांड थी पिटिशन के अंदर कि उनको रिहा किया जाए और उनको भारत के हवाले किया जाए, सो ये तो नहीं हुआ है, इस एतबार से ये शॉकिंग है, सेटबैक है, क्या कहेंगे कानूनी एतबार से? अर्शी तिर्की आप अगर आप मुझे सुन पा रही हैं?
हेलो
जी,
हेलो
जी जी, आपको मेरी आवाज पहुंच रही है?
हाँ, सुनाई दे रही है।
जी, मेरा यही सवाल था कि जो एक भारत का एक पॉइंट ऑफ व्यू था या उसकी डिमांड थी इस पिटीशन के अंदर कि कुलभूषण जाधव को रिहा किया जाए या उनको भारत वापस भेजा जाए, ये तो कबूल नहीं की गई है, सो इस एतबार से क्या ये सेटबैक है भारत की प्ली के लिए या उसका जो मुकदमा पूरा केस जिसके ऊपर बिल्ड किया गया जिन आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर?
तो आईसीजे के फैसले में अगर देखा जाए तो वो जिस कन्वेंशन के हिसाब से उसने जो फैसला दिया, जो वियना कन्वेंशन है, तो उसके अंदर उसके तहत ये रेमेडी दी नहीं जा सकती है कि कुलभूषण जाधव जी को भारत में वापस लौटाया जाए, क्योंकि कोर्ट का जो आईसीजे का जो जुरिस्डिक्शन है वो यही फैसला कर सकती है कि आर्टिकल 36 का उल्लंघन हुआ है या नहीं। तो उस हिसाब से इंडिया के फेवर में फैसला चला गया, पर कोर्ट बस उस डिसीजन का रिव्यू के लिए बोल सकती है, पर ये नहीं बोल सकती कि पाकिस्तान कुलभूषण जाधव को वापस भेजे।
सही,
तो ये कोर्ट के डिक्शन के बाहर चले जाएगा।
बैरिस्टर अमजद मलिक साहब, अब ये बताइएगा कि ज़ाहिर है कोई क्लैरिटी नहीं होती है कि आम आदमी जो सोचना चाहता है, अब 1.5 अरब की पॉपुलेशन है ऑलमोस्ट भारत के अंदर, पाकिस्तान में भी हैं, अपने अपने तरीके से लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई एक शेख कोई एक पॉइंट अगर उसको वहाँ पे अहमियत दी गई है तो वो उसी के ऊपर ज़्यादा खेला जाएगा। अब इस केस का एक्चुअली फैसला क्या एक बार फिर पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से होना है या इंटरनेशनल कोर्ट डायरेक्टली हर मामले को असर नो देखने की ज्यूरिसडिक्शन या दायरा कार या दायरा इख्तियार रखती है?
पहले नंबर पे तो मेरे ख्याल में पार्शल, दोनों पार्टी की पार्शल सक्सेस है, इसीलिए वो क्लेम कर रहे हैं। एक तो इंडिया की सक्सेस है कि वो इसको मेंटेन करने में कामयाब रहे के वियना कन्वेंशन के तहत हमारी एक्सेस, काउंसलर एक्सेस बनती है। पाकिस्तान की सक्सेस ये है,
सो फिर पाकिस्तान को पहले दे देनी चाहिए थी एक्सेस, तो फिर जो भी फैसला था वो ज्यादा मुसद्दक होता, ज्यादा ऑथेंटिक होता।
पाकिस्तान उसमें से तीन चार चीजें अच्छी कर चुका है। एक, वो बता चुका है कि हमारे पास आपका शहरी है। दो, वो एहतजाज कर चुका है कि आपका शहरी दहशतगर्दी में मुलव्वस था। तीन, दिसंबर 2017 में वो उसकी पूरी फैमिली को मिलवा चुका है, तो वो पार्शल एक्सेस तो दे ही चुका है, बता ही चुका है उनको कि आपका शहरी हमारे पास है। यहाँ पाकिस्तान इंडिया की हिस्ट्री देखें तो यहाँ तो 20-20 साल लोगों के लोग दिलों में गलसड़ जाते हैं, बताया ही नहीं जाता। तो ये तो एक अच्छी चीजें थी इसमें। असल प्रॉब्लम इनके आपस के इंडो पाक तल्लकात की वजह से ऐसे केसेस जो हैं वो उसमें जो तहफजात और चीजें जो है होती है खराब। इस केस में मेरे ख्याल में जजमेंट विल स्टे, लेकिन आगे अपील जो है वो पाकिस्तान के ऊपर होगा कि वो हाई कोर्ट में अपील राइट देता है या नहीं देता है, या बोर्ड बना के मिलिट्री कोर्ट के जरिए इसको रिव्यू करता है, कोई रिव्यू बोर्ड बना देता है। एक दूसरा, पाकिस्तान और भारत के तल्लुकात के ऊपर डिपेंड करता है अगले आने वाले दो सालों में। जैसे करतार सिंह है, जैसे उन्होंने फजाई रास्ता खोला है, अगर इनके आपस में कोई नरमी पैदा होती है तो गिव एंड टेक हो सकता है। अगर उनकी हिरासत में कोई इनके शहरी है और इनकी हिरासत में कोई इनके शहरी है, आपस में एक्सचेंज हो सकता है। अभिनंदन की तरह कोई ऐसा कोई आपस में बातचीत हो सकती है। डिपेंड करता है कि ये दोनों तरफ कोई कमीशन बना के एक दूसरे के एसओपी तय करें, भाई इतनी आबादी है जितने आपने तादाद बताई है, एक दूसरे के शहरी क्रॉस बॉर्डर जाते रहते हैं, आते रहते हैं, वीजे ओवरस्टे करते हैं, पकड़े जाते हैं और क्रिमिनलिटी के इश्यूज आ जाते हैं, लेकिन कम अज कम इनका आपस में कोई, ये दोनों तरफ के कोई एक सिविलियन, एक आर्मी ऑफिसर, एक जज, तीनों तरफ से बैठ के बनाए एसओपी कि आपने कन्वेंशन कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है, क्या एसओपी होंगे, कितने दिन लगेंगे, कितने दिन में हम पाएंगे। कन्वेंशन तो है लेकिन ये आपस में
आपकी गुफ्तगू से जाहिर है मेरे ये अंदाजा होता है कि एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान और भारत दोनों को मिलके सियासी सतह पे मिलके बैठ के ये फैसला करना है इस तरह के मुकदमात का।
आप कंक्लूड करने के लिए कहें तो मैं यही कहूंगा कि आईसीजे ने इंडिया और पाकिस्तान को एडवाइज किया है कि भैया का खौफ करें, मिल बैठ कर बात करें।
ये जो टेक्निकली एलेबोरेट किया बरिस्टर अमजद मलिक साहब आपने, अर्शी तिर्की आपने भारत से, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अब इसके जरा पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन के ऊपर हम बात करेंगे। रितुल हमारे साथ रहेंगी, जाहिद गिश्कोरी ने हमें ज्वाइन किया है, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान से, और अगले सेगमेंट के लिए हमने उनको जहमत दी थी, खासतौर पर जब जमात उद्दावा के चीफ हाफिज सईद की गिरफ्तारी के पस मंजर में, और हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान भारत ताल्लुकात के ऊपर इस मुकदमे के असरात, या क्योंकि कनेक्ट भी कर सकते हैं, इंगेज भी कर सकते हैं, किस तरह के मामलात को हल करने के लिए आपस में बात ही करना होगी। मुश्ताक अहमद मीर साहब फॉर्मर एम्बेसडर हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद साहब, हम बात कर रहे थे पहले, रितुल ने हमें एक्सप्लेन किया वहाँ से कि भारत का मीडिया ज़ाहिर है उसको अपनी फतह के तौर पर बयान कर रहा है, पाकिस्तान के अंदर अब पाकिस्तानी चैनल्स देखते हैं तो वहाँ पर भी खुशी के शादियाने बज रहे हैं कि पाकिस्तान जीत गया है। पाकिस्तान कैसे देख रहा है ओवरऑल इस आलमी अदालत इंसाफ के इस फैसले को?
देखिए, जो पाकिस्तान का मीडिया है, मैं दोनों मीडिया को मॉनिटर कर रहा हूं और मैंने कुछ अभी जजमेंट भी डिटेल उसकी पढ़ी है, जिसमें देखें जो इंडिया की सबसे बड़ी एक कैश थी या बहुत बड़ी जो उसने अपील की थी कि कुलभूषण का जो इंडिया को हैंडओवर किया जाए और पाकिस्तान की जो अदालत जमीस्ट्री को उसको सजा दे चुकी है, उस ऑर्डर को एनल किया जाए, लेकिन ये नहीं मानी गई है। यही एक वजह है जो पाकिस्तानी मीडिया इसी को लेके आगे जा रहा है, जो कि बिल्कुल फैक्ट्स है। अगर आप ऑर्डर पढ़ें, मेरे सामने इस वक्त ऑर्डर खुला है, जो अदालत ने ये कहा है कि जो पाकिस्तान की अदालत ने या इंडिया ने रिक्वेस्ट की है कि पाकिस्तान को ये डायरेक्ट किया जाए कि उसका डिसीजन जो था कोर्ट का सजाए मौत वो खत्म की जाए और जादेव को फैसिलिटेट किया जाए, जो उसका सेफ पैसेज है इंडिया को वापस किया जाए। तो उन्होंने बाकायदा कहा है कि आर्टिकल 36 इस बात की इजाजत नहीं देता, इस अदालत को, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट पॉइंट था उसको वापस करना इंडिया को या सजा उसकी देखना पाकिस्तान की जीत नजर आती है इस पॉइंट पे।
सही,
उन्होंने कहा है कि ये वायलेशन नहीं है, लेकिन एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो पाकिस्तान ने एक्सेस उसको समहाउ नहीं दी, उन्होंने कहा है कि आर्टिकल 36 के तहत आप एक्सेस दें। तो ओवरऑल पाकिस्तानी मीडिया इस बात को रिपोर्ट कर रहा है कि आलमी अदालत इंसाफ ने भारत की सबसे जो अहम अपील थी कुलभूषण की आजादी और फौजी अदालत की सजा की मनसूखी उसको मुस्तरद कर दिया, और बाय लॉज जो डिमांड थी, मेजर डिमांड, वो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है। तो बजाहिर मीडिया हकायक पे और बिल्कुल हकायक पे रिपोर्ट कर रहा है कि ये पाकिस्तान की कामयाबी है।
ठीक है, अब मैं जरा इसके असरात के ऊपर आता हूँ। हमारे साथ मुश्ताक अहमद मीर साहब हैं, फॉर्मर एम्बेसडर, और तीजाकार रिदल जोशी भारत से हमारे साथ मौजूद हैं, जाहिद गिश्कोरी साहब ने हमें ज्वाइन कर रखा है। मीर साहब बहुत शुक्रिया, हमने इसके जो टेक्निकल पहलू हैं और जो मीडिया कवरेज के जाविये हैं उसके ऊपर हमने बात कर ली है, लेकिन अब ये मामला बज़ाहिर एक बार फिर दोनों मुल्कों की एक तरह से कोर्ट में गया है कि उन्हें एड्रेस करना है, उनको भारत को कौंसलर एक्सेस मिली है, पाकिस्तान ने इसको रिव्यू करना है, सो इसके सियासी फैसले पे किसी पे पहुंचना होगा, پولیٹیکلی انگیج کر کے اس طرح کے مسائل حل کرنے ہوں گے، یا عدالتیں ہی ایسے معاملات کے لیے بہتر فورم ہوتی ہیں؟ تعلقات کو خاص طور پہ جس نہج پہ آلریڈی موجود ہیں، سو چونکہ ایک آفیسر ہیں بھارت کے، ایکس آفیسر ہیں، سو اس ریفرنس میں کیا جو ہے انگیجمنٹ کے امکانات بڑھیں گے یا کشیدگی بڑھے گی؟
بہت مہربانی. سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت ہی بیلنسڈ قسم کا ڈیسیژن ہے انٹرنیشنل لیول پہ، اور انہوں نے کوشش کی ہے کہ دونوں ملکوں کا جو بریف ہے اس کو اکوموڈیٹ کیا جائے. جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، پاکستان کو انہوں نے بلیم کیا ہے کہ آپ نے کونسلر ایکسیس نہیں دی، آلدو وہ کلبھوشن ایک کرمنل ہے، ایک سپائی ہے، پھر وہ مگر وہ ایک انسان تو ہے، اسے پوچھنا چاہیے تھا، اسے بتانا چاہیے تھا اور اسے آزادی دینی چاہیے تھی کہ وہ اپنی مرضی کا اپنی امبیسی سے ڈسکس کر کے وہ وکیل کرتا اور اپنا کیس وہ فائٹ کرتا. تو یہ ایک نیگیٹو پوائنٹ ہے جو کہ ہماری ڈپلومیٹک پریکٹس پہ لکھا جائے گا. دوسری جو بات ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ ان کے خیال میں پاکستان نے جو ملٹری ٹرائل کیا ہے، سول ٹرائل نہیں کیا، اس سے بھی انہوں نے کوشچن کیے ہیں. جہاں تک ہندوستان کا تعلق ہے، جیسے ہمارے دوست کہہ رہے تھے، وہ بہت ہی امپورٹنٹ ڈیسیژن ہے کہ انہوں نے ہندوستان کی بات نہیں مانی اور کلبھوشن کو انہوں نے ریلیز کرنے کا آرڈر نہیں دیا. وہ ہو نہیں سکتا تھا، انٹرنیشنل کورٹ کے پاس کوئی پاورز نہیں ہے کہ کسی کرمنل کو، کسی بندے کو چھوڑ دیں. وہ تو ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے، وہ انٹرنیشنل ریلیشنز میں انٹر اسٹیٹ ڈسپیوٹ کو سیٹل کرتی ہے، لیکن وہ بندوں کو چھوڑ دی یا بند نہیں کرتی. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں غلط ایکسپیکٹیشن تھی، لیکن پھر بھی وہ ڈیش ٹو گراؤنڈ ہو گئی. یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. دوسرا پوائنٹ ہے کہ انہوں نے، انٹرنیشنل کورٹ نے اسٹیبلش کیا ہے کہ یہ بندہ واقعی انڈیزائربل تھا، یہ جاسوس تھا، یہ ایک انہولی پرپز کے لیے آیا، اس نے پاکستان جیسے ملک کو توڑنے کی کوشش کی. تو اس کو پاکستان کی حکومت نے بالکل صحیح پکڑا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے لیے پلس پوائنٹ ہے. اب آپ نے فرمایا اس کے پولیٹیکل آسپیکٹ، اس کے بہت سیریس پولیٹیکل آسپیکٹس ہیں جس سے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. پولیٹیکل آسپیکٹ یہ ہیں کہ پاکستان کی یہ اسپیناج کا
جی
کمپلیٹلی انفیسٹڈ ہے. یہ سری لنکا ہو گیا، نیپال ہو گیا، بنگلہ دیش ہو گیا، چائنا ہو گیا، ایران ہو گیا، افغانستان، ہندوستان، پاکستان، یہ ریجن ہے جو کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں یورپ میں ہوتا تھا یا رشیا میں یا کمیونسٹ ورلڈ میں، وہ وبا اس ریجن میں آ گئی ہے. اور ہر چوتھا بندہ آپ اخبار اٹھا کے دیکھیں تو کسی نہ کسی جھگڑے میں پکڑا رہتا ہے. تو اس پہ بہت افیکٹو قسم کی کنٹرول مشینری چاہیے. تو اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ ہو. اور یہ ایک بہت بڑا لیسن ہے ہندوستان کی حکومت کے لیے اور پاکستان کی حکومت کے لیے کہ جب آپ یہ جو انٹرنیشنل اسپیناج کے حساب کتاب کو ڈیل کرتے ہیں، ان کو ٹیکنیکلی لیگلی ساؤنڈ بیسس پہ صحیح کریں، کیونکہ یہ 21st century ہے، ہیومن رائٹس کا زمانہ ہے، میڈیا کا زمانہ ہے، آپ کا زمانہ ہے، ساری دنیا بولتی ہے. تو اس کو بہت کیئرفلی کرنا چاہیے. خاص طور پہ ہندوستان کو بہت احتیاط کرنی چاہیے کیونکہ پاکستان اب بہت مختلف ہے. جہاں تک فیوچر ہے، میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کوشش کریں گے، ان کی حکومت کوشش کرے گی کہ کلبھوشن کو پھانسی چڑھائے بغیر ہندوستان اور پاکستان میں اریٹیشن بڑھائے بغیر اگر کسی طرح کوئی سولوشن نکل کے آتا ہے، پیس ہوتا ہے، یہ واشنگٹن بھی جا رہے ہیں، یہ دوسرے ملکوں میں بھی جا رہے ہیں، اور کوئی میڈیشن ہو جاتی ہے تو اس کا کوئی پیسفل تو نہیں ہوگا، لیکن کوئی سولوشن نکل آئے گا جس میں ہندوستان پاکستان کی جو جٹینیس ہے، جو جھگڑا ہے، وہ بڑھے گا نہیں.
जी रितुल जोशी, आप ये बताइएगा कि इसके पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स के बारे में भारत में क्या कहा जा रहा है। जैसे ये तवक्को है कि ऑफ कोर्स एक साबिक मतलब एक भारत के शहरी हैं या साबिक ऑफिसर हैं पाकिस्तान के दावे के मुताबिक, सो इंगेज तो करेंगे, और जब इंगेजमेंट होगी तो इसका मतलब ये कि टेबल पे बैठना ही मसाइल या जो इश्यूज हैं उनको एड्रेस करने में मददगार होता है, हेल्पफुल होता है। सो क्या इसकी पोलिटिकल रिपरकशंस हो सकते हैं या फ्यूचर इंगेजमेंट?
अक्सर जब हम एंगेजमेंट की बात करते हैं तो अगर भारत और पाकिस्तान जैसे दो नेबर्स, दो पड़ोसी मुल्कों को अगर आपने भले ही फॉर्मल स्ट्रक्चर्ड बातचीत बहुत लंबे वक्त से नहीं हुई है, लेकिन आपको भी ये बात अच्छे से मालूम होगी कि ट्रैक टू का रास्ता बंद नहीं हुआ है। ट्रैक टू टॉक्स अभी भी जारी हैं और वो चल रही हैं, और इस बीच कुछ जो पॉजिटिव नॉइजेस आई हैं वो एक करतारपुर की तरफ से आई है, जहां ऐसा लग रहा है कि दोनों मुल्क कोई एक बीच का रास्ता बना के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके साथ ही साथ जो टेरर के ऊपर भारत की लगातार ये डिमांड होती थी कि पाकिस्तान को क्रैकडाउन करना चाहिए, तो पिछले कुछ वक्त में हमने एक्शन भी देखा है और आज भी एक बड़ी खबर आई है। तो इस लिहाज से कुछ पॉजिटिव नॉइजेस दोनों तरफ से आ रही हैं, और भाई एफएटीएफ का एक प्रेशर है पाकिस्तान के ऊपर, साथ ही साथ इमरान खान की इम्पेंडिंग विजिट है यूएस में, तो इन सब चीजों से शायद कुछ एक ऐसा माहौल बन सके कि ये जो ट्रैक टू है वो ट्रैक वन पे आए और कोई स्ट्रक्चर्ड टॉक्स हो। लेकिन ये अभी हो जाएंगी, अगले महीने हो जाएंगी या बहुत जल्द हो जाएंगी, ये कहना थोड़ा सा जल्दबाजी होगी। मुझे लगता है अभी भी एक फॉर्मल स्ट्रक्चर डायलॉग के लेवल पर आने में थोड़ा वक्त लगेगा भारत को और पाकिस्तान को।
जी जाहिद किशोरी साहब, क्विकली इसके ऊपर फिर हम जाएंगे अगले सेगमेंट में, जिसमें जमात दावा के सरबराह हाफिज सईद, उनकी गिरफ्तारी पर बात करेंगे। अगेन एक बार फिर पाकिस्तान भारत का ही कजिया है, लेकिन जो अपकमिंग विजिट है, आइंदा दौरा है आइंदा हफ्ते प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का, उस रेफरेंस में भी इसको बहुत आम समझा जा रहा है। लेकिन कुलभूषण जाधव फैसला, और एक बार फिर दोनों मुल्कों को बाहर लगता है कि डिसाइड करना पड़ेगा इंगेजमेंट की तरफ ले जाएगा या कॉन्फ्रंटेशन की तरफ। जाहिद किशोरी साहब
से बात कर रही थी, उससे ये कहना अभी प्रीमेच्योर होगा, लेकिन मुझे लगता है कि जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान हैं वो चाहते हैं कि निगोशिएशन में आगे जाएं, इंडिया के साथ बातचीत आगे बढ़े, और करतारपुर पे बातचीत आपने देखा जहाँ इस्लामाबाद में हुई, अभी आगे जाकर फिर और डिप्लोमेसी के काफी ऑप्शन मौजूद हैं, और ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि दोनों ममालिक आज के इस फैसले के बाद फिर दोबारा मिल जाते हैं, इससे भी बात हो सकती है। तो जहां तक गुडविल जेस्चर है पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, वो मेरे ख्याल में पीस मोड में है, और इंडिया से भी कोई इस तरह की चीजें नहीं आई बजाहिर, जिससे आज से 4 महीने पहले पता चलता था कि दोनों ममालिक कहाँ खड़े हैं, बहुत आगे चले गए हैं। मुझे लगता है कि ये जो वज़ीर-ए-आज़म का दौरा होगा अमेरिका का, ये बड़ी डेवलपमेंट आई है। पाकिस्तान में पहली दफा ऐसा हुआ है कि हाफिज सईद को और तमाम जो टॉप टायर लीडरशिप है पाकिस्तान में, चाहे वो लश्कर तैयबा की हो या फिर जैश मोहम्मद की, ये वो लोग अब गिरफ्तार हो चुके हैं। और मैं क्योंकि 12 साल से इस वज़ीर-ए-आज़म को मैंने देखा है, इसको कवर किया है, मुझे लगता है कि ये संजीदा कोशिशें हैं जो 7 महीने में पाकिस्तान ने की हैं, या तो फिर वो एफएटीएफ का प्रेशर हो सकता है पाकिस्तान पे, या फिर अभी आज जो हुआ, और फिर जाहिर है अमेरिकन प्रेसिडेंट की तरफ से एक ट्वीट भी आया है इस बात पे, तो ये बड़ा सिग्निफिकेंट है इसका दौरा जो आने वाले दिनों में इसका इंपैक्ट हमें नजर आएगा, पूरे रीजन पे आएगा, ना सिर्फ पाकिस्तान इंडिया के लिए बल्कि पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान का इशू है।
ठीक है, मैं वैसे जैसे जमात दावा के ऊपर स्पेशली बात करता हूँ, अगेन रितुल एक बार फिर आपके पास आना चाहूंगा, ये पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट के रेफरेंस में आज एक जो स्टेट डिपार्टमेंट है उसने बहुत एक सपोर्टिव स्टेटमेंट दिया है कि बड़ा इनक्रेडिबली सपोर्टिव है जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान पीपल टू पीपल टाइज बेहतर हो रही हैं। करतारपुर राहदारी के पस मंज़र में बात कर रही थी जो स्टेट डिपार्टमेंट की स्पोक्स पर्सन है मॉर्गन ऑर्टेगस, और उन्होंने एक सवाल का ये जवाब दिया था इस बैकड्रॉप में, और वो ये कहते थे कि मैं एग्जैक्टली उनके वर्ल्ड अगर करूँ, या दैट्स सर्टनली अ गुड न्यूज़ रिपोर्ट वाजंट इट, वी इनकरेज इट, ये उनका मौकफ था। सो एक तरह से जो भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी भी उनको सपोर्ट कर रही है, पाकिस्तान भारत की लीडरशिप से भी ऐसे इशारे मिलते हैं कि उनको इसकी ज़रूरत का एहसास हो रहा है कि इंगेज तो करना पड़ेगा बहुत सारे इश्यूज़ के ऊपर। सो ये पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट के रेफरेंस में बताइएगा कि क्या इम्कान हैं, क्या प्रॉस्पेक्ट्स पैदा हो रहे हैं।
देखिए पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट किसी भी पड़ोसी मुल्कों के बीच में अगर रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए शायद सबसे सबसे बेहतरीन तरीका हो सकते हैं, लेकिन अगर हम कुछ जो पिछले पुराने जो वाकयात हुए हैं, पुलवामा अटैक की अगर मैं खास तौर पर बात करूं और उसके बाद फिर भारत में इलेक्शन हुए, तो वो जो सेंटिमेंट बना था पुलवामा के दौरान और उसके बाद इलेक्शन में सेंटिमेंट को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट भी किया गया था, तो एक वक्त पर आपको खासतौर पर इंतखाब से पहले बड़ा गुस्सा आवाम में नजर आ रहा था, लेकिन ये बात शायद एक एंडलेस नॉन डायलॉग की सिचुएशन आप नहीं रख सकते हैं। और जो बात आप कह रहे हैं पूरे खित्ते में ये बहुत इंपॉर्टेंट है पीस के लिए कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो रिश्ते हैं उनमें बेहतरी आए, क्योंकि पूरे रीजन की पीस को इन दोनों कंट्रीज के जो रिलेशनशिप है वो इन्वॉल्व करते हैं। तो अहमियत तो देखिए सब समझते हैं, लेकिन वही बात है कि शायद अब इस बार जो भारत की हुकूमत है, क्योंकि उसके पास एक बड़ी एब्सोल्यूट सी मेजोरिटी है और उसका एक अपना एक स्टैंड रहता है पाकिस्तान के साथ रिश्तों को लेके, तो वो जो भी नेगोशिएशन करना चाहेगी वो शायद ये दिखाते हुए करना चाहेगी कि हम पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ से नेगोशिएशन टेबल पर आए हैं और पोजिशन ऑफ वीकनेस से नहीं आए हैं।
जी रितुल हमारे साथ ही ईगा एम्बेसडर मुश्ताक अहमद मीर साहब आप भी और जहद गिशकुरी आप भी, चंद सेकंड की एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, बिलखसूस हम फोकस करते हैं हाफिज सईद की गिरफ्तारी पे।
वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन आपसे मुखातिब है मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पर।
वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन है प्रोग्राम है जहाँ रंग मैं हूँ असद हसन और प्रोड्यूसर हैं अंजुम हैरत गिल। बात हम करेंगे प्रोग्राम के इस हिस्से में हाफिज सईद, जमात उदावा के सरबराह हैं, कालादम यह तंजीम है, पंजाब के महकमा इंसदाद दहशत गर्दी यानी एंटी टेररिज्म जो डिपार्टमेंट है उसने हाफिज मोहम्मद सईद को गिरफ्तार कर लिया है, उन्हें गुजरांवाला से गिरफ्तार किया गया है, और पंजाब पुलिस का ये जो डिपार्टमेंट है काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, उसका यह कहना है कि हाफिज सईद पर दहशतगर्दी को परवान चढ़ाने के लिए यानी इसको प्रमोट करने के लिए फंड्स इकट्ठा करने के इल्जाम हैं। सो अगेन ये फंड्स टेररिज्म फाइनानसिंग, सो जहन में FATF आता है और FATF आता है तो फिर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का दौरा भी आता है। बहुत सारे मुबसरीन का ये ख्याल है कि पाकिस्तान जो अमेरिका से हासिल करना चाहेगा, अमेरिका की तो डिमांड ज़रूर होगी कि अफगानिस्तान में वो अपना मज़ीद एक एक्टिव रोल प्ले करे, लेकिन पाकिस्तान ये चाहेगा कि FATF हो वहाँ से बिलखसूस, और फिर IMF से जो मामलात हैं लोन्स के वहाँ से कुछ कंसेशंस, कुछ रियायत और कुछ रिलैक्स रूल्स जो हैं वहाँ पे हो जाएं, सो पाकिस्तान के लिए वो प्रोडक्टिव हो सकते हैं। सो जाहिद आप इस मामले को फॉलो करें, पहले आप इस पे हमें थोड़ी खबर के एंगल से अपडेट कीजिएगा, फिर एम्बेसडर मेहर का इस पे तजिया लेते हैं। ये क्या इसी दौरे के बैकड्रॉप में है, इसकी टाइमिंग को देखते हुए आप हमें बताइएगा, फिर आज एक और भी टाइमिंग थी कि आज अदालत आलमी अदालत इंसाफ से एक और इसी तरह का फैसला आना था जिसमें पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो एक कंटेंशियस इश्यूज हैं उसके ऊपर बात होना थी। सो आज भारत में तो यकीनन इस बात के ऊपर तशफी होगी, अमरीका भी डिमांड करता है, और जैसे आपने पहले रेफरेंस दिया प्रेजिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट इसके ऊपर जारी किया है और उनका ये कहना है कि हमारी आफ्टर अ 10-year सर्च द सो कॉल्ड मास्टर माइंड ऑफ मुंबई टेरर अटैक has been arrested in Pakistan. Great pressure has been exerted over the last 2 years to find him. ये प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट है, यकीनन भारत के लिए बहुत हौसला अफजा होगी, पाकिस्तान के लिए भी इसके अंदर मैसेज है। पाकिस्तान किन तैयारियों के साथ आ रहा है, क्या ये उन्हीं तैयारियों का हिस्सा है?
देखिए ऐसा जिसके पीछे एक पूरा बैकग्राउंड है, आज से 12 दिन पहले मैंने ही रिपोर्ट किया था कि ये पॉसिबिलिटी है हाफिज सईद और तमाम जो लीडरशिप है उसको गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि 6 से 7 महीने से एक संजीदा क्रैकडाउन जो पाकिस्तान की काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है पंजाब में उनका जो सूबा है, क्योंकि इनकी तमाम तर पंजाब ही में एक्टिविटीज होती हैं ज्यादातर, वहीं से इनको इनकी गिरफ्तारियां शुरू हुई। तो आज बिलाखिर टेररिज्म चार्जेस पे उनको गिरफ्तार किया गया है और बाकायदा FIR काफी उसमें दर्ज की गई है उसके खिलाफ। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, ना सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि पाकिस्तान अपनी एक स्ट्रगल कर रहा है टेरर फाइनेंसिंग के सिस्टम में, क्योंकि पाकिस्तान को सितंबर और नवंबर और अक्टूबर इन 3 महीनों में ये चीजें क्लियर करनी है कि पाकिस्तान टेररिज्म और फाइनेंसिंग को सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि FATF का एक बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान के लिए, वहाँ पाकिस्तान ब्लैकलिस्ट हो सकता है अगर ये स्टेप नहीं लेता है। तो यही एक वजह है कि पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहा है, और साथ ही ये आप इसको महज इत्तफाक समझें या फिर ज़ाहिर हुकूमत की अपनी पॉलिसी होती है, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म अमेरिका जा रहे हैं और इसको पहले ही इंटरनेशनल टेररिस्ट ना सिर्फ इसके इदारों को टेररिज्म उसने बैन किया गया है, आपको मालूम है दो तो बड़ी तंजीमें हैं इनकी, लश्कर तैयबा थी और फिर फलाह इंसानियत फाउंडेशन और फिर जमात दावा और फिर दो और सब्सिडी इसकी एडमिनिस्ट्रेशन की, तमाम को पहले ही डिक्लेयर किया जा चुका है, पाकिस्तान ने भी किया है, और ज़ाहिर है पाकिस्तान का ये स्टेप और फिर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये ट्वीट, तो ये पाकिस्तान के लिए एक शायद इनक्रेडिंग साइन होगा, वज़ीर आज़म जाएंगे कि पाकिस्तान एक सिंसियर एफर्ट कर रहा है रीजन में इस तरह के जो भी एलिमेंट्स हैं उनको उनको कंट्रोल करने के लिए, और जाहिर है इंडिया भी उसको पहले यही चाहता था, अभी पाकिस्तान ने स्टेप लिए हैं, तो जैसे मोहम्मद के पहले ही फरवरी को पाकिस्तान ने उसमें रखा हुआ है, तो ये एक इनकरेजिंग साइन है रीजन के लिए।
एम्बेसडर मेयर साहब, जैश मोहम्मद के सरबराह हैं ऑलरेडी डिटेंशन में, अब जमात दावा के सरबराह भी, और ये वो जमातें हैं जो अमेरिका का महकमा खारजा जिनको टेररिस्ट डिक्लेयर कर चुका है, जिनको बैन कर चुका है, सो क्या ये इसलिए भी किया गया है कि बजाय इसके कि अमेरिका की तरफ से डिमांड आए और ये एक वहाँ पर फोकस बन जाए, सो पहले ही ये एक्शन ले लिए जाए और पाकिस्तान अपनी जो डिमांड्स करना चाहता है वो उसमें ज़्यादा फ्लैक्सीबल हो, क्या है आपके जहन में इसका तजिया बनता?
फैक्टर है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, एक तो जियो पोलिटिकल सिचुएशन है क्योंकि एक नया अलायंस बन रहा है जिसमें पाकिस्तान है, चाइना है, रशिया है, और किसी स्टेज पे शायद वो ईरान को भी लाने की कोशिश करेंगे, और उसका अमेरिका है, और उसका आइडिया ये है कि अफगानिस्तान को सेटल किया जाए और वहां से अमेरिकन फोर्सेस को विदा किया जाए, उसके लिए पाकिस्तान का एक सेंट्रल क्रूशल रोल है, और उस रोल के लिए जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है वो हर किस्म की कंसेशन दे रहा है, बना रहा है, तो पाकिस्तान होल हार्टेडली सपोर्ट कर रहा है इस नए अलायंस को, ये एक वजह है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट वजह है जो हमारे दोस्त ने कही है वो है इकोनॉमिक रीजन। इकोनॉमिक रीजन में अब इमरान खान ने सोचा है कि यूएस के पास जाने के अलावा और कोई चारा नहीं है, और नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, नेगेटिव एफटी वगैरह है, इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम है, और पॉजिटिव है कि अमेरिकन शेयर अकेली कौम है जो ऐसी सिचुएशन में मैसेज किस्म की एक दे सकती है, और वो जाना चाह रहे हैं और चाह रहे हैं कि अमेरिकन इंटरनेशनल एड और इंटरनेशनल डेवलपमेंट असिस्टेंस और इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए फंड्स आए, और वो नहीं आएंगे जब तक अमेरिकन कंडीशंस नहीं होंगी, और जिसमें वो कंडीशन है जिनका आपने जिक्र किया है।
सही
सवाल ये है कि पाकिस्तान के अंदर ये जो एजिटेटिव क्लासेस हैं, जो प्रॉब्लम क्लासेस हैं, इनको कैसे सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि प्रीवियस गवर्नमेंट्स इनको सपोर्ट करती रही है या कम अज कम इन पे कम अज कम इन डिफरेंट एटीट्यूड बरकरार करके रखा है, अब ये या तो बिखर जाएंगी या ये वायलेंट हो जाएंगी या इनको सप्रेस किया जाएगा, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है जो अगले दो साल में देखेंगे अगर इमरान खान साहब की पॉलिसी और पोजीशन जो वो अमेरिका में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसे इम्प्लीमेंट किया जाता है।
जी रितुल जोशी, आप हाफिज सईद की गिरफ्तारी के बारे में बताइएगा कि भारत से क्या रिएक्शन आपने मॉनिटर किया है, और अमेरिका से अगर एफएटीएफ में कोई मदद चाहिए या अमेरिका से दबाव से बचने के लिए मुमकिन है कि ये एक्शन हो, लेकिन क्या भारत इससे मुतमइन होगा आज जो एक्शन हुआ है पाकिस्तान के अंदर?
देखिए अभी जो आज से पहले सर जो बात कह रहे थे कि इससे पहले की जो हुकूमतें रही हैं या तो बड़ी इंडिफरेंट रही थी, जो बाकी तमाम और भी लोग हैं जिनके खिलाफ भारत एक्शन चाहता रहा है पाकिस्तान से या फिर सपोर्ट करती रही है, तो मेरी कुछ रोज पहले ही एनईए में कुछ बहुत हाईली प्लेस सोर्सेज से बात हो रही थी, और उनसे मैंने यही सवाल पूछा था कि क्योंकि अब पाकिस्तान ने क्रैकडाउन करना शुरू किया, हाफिज सईद की खबर तो आ जाए लेकिन इससे पहले भी कुछ क्रैकडाउन हुए थे, तो एनईए का जो पूरा एटीट्यूड था उनका ये कहना था कि देखिए इस तरह के क्रैकडाउन तभी होते हैं जब पाकिस्तान के ऊपर कोई दबाव आता है, और इस वक्त तो दबाव इतना ज्यादा है तो शायद एक क्रैकडाउन करते हैं और उसके बाद धीरे धीरे वो अपने पूरे एक्शन को डाइल्यूट कर लेता है। और इस चीज को लेके काफी तल्खी, काफी नाराजगी मुझे एनईए में नजर आई थी। और आज जो खबर आई हाफिज साहब की, वैसे मैं आपको सही बताऊं तो कुलभूषण यादव की खबर के आगे इस वक्त किसी ने उसको तवज्जो दी ही नहीं, लेकिन ये जरूर है कि भारत की एक बड़ी डिमांड हमेशा से रही थी हाफिज साहब के ऊपर एक्शन होना, तो कोई एक पॉजिटिव साइन के तौर पर भारत इसे लेगा। साथ ही साथ कतार की हमने बात की कि कैसे बात आगे बढ़ रही है, पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस खोला है, वो भी एक रिलीफ भारत के लिए रहा है।
बहुत शुक्रिया रिदिल जोशी, आपने हमें भारत से ज्वाइन किया। जायद गिशकोरी आप हमारे साथ थे मौजूद पाकिस्तान से, और एम्बेसडर मुश्ताक अहमद मेर साहब, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद सामीन वापस आएंगे और प्रोग्राम के अगले हिस्से पे बात करेंगे पाकिस्तान की मईशत और टैक्स नेट बढ़ाने की कोशिशें।
वीओए उर्दू अब आपके हाथ में, पढ़िए, देखिए, सुनिए, सेव कीजिए, फॉलो कीजिए, दूर जाने की जरूरत नहीं। वीओए उर्दू की अहम तरीन खबरें और ब्रेकिंग न्यूज की लाइव स्ट्रीमिंग वीडियोस अब आपकी हथेली में हैं। आईफोन के लिए खसूसी तौर पर तैयार की गई उर्दू वीओए की खसूसी ऐप डाउनलोड कीजिए, जो ऐप स्टोर पर भी दस्तियाब है। वीओए उर्दू अब आपके हाथ में।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन है और प्रोग्राम है जहां रंग मैं हूँ असद हसन और प्रोड्यूसर है हमारे साथ अंजुमैर अलगिल। बात हम करेंगे पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान के अंदर टैक्स नेट उसको बढ़ाने और मईशत को सहारा देने की कोशिशों पे। एक तरफ तो एफबीआर के अंदर रिफॉर्म्स हैं जिसके ऊपर एहतजाज भी है, जिसको सराहा भी जा रहा है जो मुआशी माहरीन का स्कूल ऑफ थाट है उसके अंदर। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि इससे ज़ाहिर है जो दबाव है, दूसरी इससे जो स्ट्राइक्स की एक वेव आ सकती है वो पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की मईशत के लिए ख़तरनाक हो सकती है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एक तरफ तो जो हुकूमती या इदारा जाती इकदाम हैं, दूसरी तरफ वो बराह रास्त बिजनेस कम्यूनिटी तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। कराची में कई बार हमने देखा कि उन्होंने बिजनेस कम्यूनिटी से एड्रेस किया है, आज गुजरांवाला में मौजूद थे और उन्होंने वहाँ से बिजनेस कम्यूनिटी से खिताब किया और वाज तौर पर उन्होंने ये बताया कि टैक्स के बगैर मुल्क नहीं चल सकता, हुकूमतें नहीं चल सकती, वरना वही हाल होगा जो पहले से था और टैक्स देना पड़ेगा। भले स्ट्राइक्स होती रहे, हुकूमत इसको इस दबाव में नहीं आएगी इस तरह की हड़तालों की, और टैक्स लेना होगा। और उन्होंने एक तरह से कहीं पे उनकी रिक्वेस्टिंग टोन थी, कहीं पे उनकी बड़ी क्लियर कट आवाज थी कि जी टैक्स नेट में तो आना पड़ेगा। उनका यह कहना था कि सिर्फ 300 ऐसे बिजनेसेस हैं पाकिस्तान के अंदर जो टैक्स दे रहे हैं, सिर्फ 300 बिजनेसेस, और 1% जो है वो टोटल जो है जो टैक्स पेयर हैं पाकिस्तान के अंदर। इससे पहले 18 लाख का फिगर था, अब गालबन ये थोड़ा डबल हुआ है। टैक्स नेट में कुछ लोगों ने अपने आप को वॉलंटियरली शामिल किया है, लेकिन वो कहते हैं कि ये बहुत नाकाफ़ी है, टैक्स दें और हर तबका अपने आप को डॉक्यूमेंट करे। ये कैसी कोशिश हैं, कितनी प्रोडक्टिव हो सकती हैं? नादिया फारूक हमारे साथ हैं, इकोनॉमिस्ट हैं और कंसल्टेंट हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ। जुबैर मोती वाले साहब हमारे साथ हैं, प्रेजिडेंट पाकिस्तान अफगान ज्वाइंट चैम्बर ऑफ कामर्स, ज़ाहिर बिजनेस कम्यूनिटी के लीडर हैं, उनसे हम बात करेंगे। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया और खैर मकदम। नादिया साहबा, आप हमें ये बताइएगा कि कैसी हैं ये एफर्ट्स टैक्स नेट को बढ़ाने की, क्या कामयाब होंगी, क्या चैलेंजेस इसकी राह में पेश आएंगे? प्राइम मिनिस्टर का एड्रेस करना, खुद उनका पहुंचना बिजनेस कम्युनिटी को कॉन्फिडेंस दे सकता है, या बिजनेस कम्युनिटी रिजिस्ट करेगी आखिर तक कि वो टैक्स को अवॉइड कर सके? मैं ये सारे साथ सब बिजनेस कम्युनिटी ऐसा नहीं है, सब दे भी रहे हैं बहुत सारे लोग, लेकिन जो टैक्स नेट में नहीं है।
बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में मुझे मदद करने के लिए। देखिए, अगर हम अपने खत्ते की तरफ नज़र दौड़ाएं तो सबसे पहले जो ईस्ट एशियन कंट्रीज की तरफ अगर हम देखें तो उन्होंने अपनी इकोनॉमी को बहुत अच्छे तरीके से वक्त के साथ साथ डॉक्यूमेंट भी किया है और उनका टैक्स टू जीडीपी रेशियो जो है वो काफ़ी अच्छा और ज़्यादा है और उसका फर्दर अपवर्ड ट्रेंड है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो बदकिस्मती से हमारा तकरीबन 11-12% के दरमियान टैक्स की जीडीपी रेशियो रहा है, जो कि बहुत बहुत नाकाफी है, जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद भी कहा है। ये बहुत जरूरी है, दो चीजें हैं इसमें, एक तो ये है कि टैक्स को जमा करना और दूसरा ये है कि उसको प्रॉपर उसकी डॉक्यूमेंटेशन होना और उसको सिस्टमेटिक तरीके से गवर्नमेंट के खजाने में जाना। ये दो मुख्तलिफ तरीके हैं। अभी हमने देखा कि पिछले दिनों जब टैक्स इम्पोज हुआ तो पाकिस्तान में जिस भी तौर पर कहीं ना कहीं हड़तालें भी होती रहीं, कुछ कागजों में इसको बॉयकॉट भी किया, बहुत सी इस तरह के हथकंडे चलते रहे, लेकिन इन दी एंड गवर्नमेंट जो है वो अभी तक तो बहुत स्ट्रांग फुटिंग पर है कि हमें टैक्स कलेक्ट करना है और वो बहुत जरूरी है हमारे रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए. और ये बहुत अच्छा इकदाम है अगर इसको एक ऐसे स्ट्रेटेजिक तरीके से गवर्नमेंट कर पाए. शायद उसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को इंसेंटिवाइज भी करना पड़े इन फर्स्ट हैंड, ताकि लोग जो है उस तरफ बिजनेस कम्युनिटी मधु हो और अपने आप को टैक्स नेट के अंदर लेकर आए और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना शुरू हो. तो उस तरीके से अगर देखा जाए, हाँ इसमें जो स्ट्रेटेजिक गैप्स हैं वो तो हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट की डायरेक्शन है या गवर्नमेंट जो चाह रही है वो बहुत लॉजिकल है और उसकी बहुत जरूरत भी है. अगर ऐसा हो जाता है कि हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशियो बढ़ जाता है तो हमारा इकोनॉमी का साइकिल चलने में बहुत आसानी हो जाएगी. कि जब गवर्नमेंट के इंटरनल जो रेवेन्यू का जो गैप है, जो फिस्कल डेफिसिट है, जो कि हर आने वाले साल बढ़ता चला जाए और अभी नजर आ रहा है कि फर्दर मजीद ये बढ़ेगा, उसमें बहुत हद तक कमी आ जाएगी.
जुबैर मोती वाला साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी. आप ये बताइएगा कि थोड़ी सी रिलक्टेंस अगर है, लोग टैक्स नेट में नहीं आना चाहते या अवॉइड करना चाहते हैं, कैसे वो आएंगे? और ये जो एहतजाज है, आखिर अगर हुकूमत डिटरमिन होगी तो कितनी देर ये एहतजाज जारी रह सकेंगे? कोई शॉपकीपर्स की जानिब से या जो दरमियाने या निचले लेवल के ऊपर बिजनेस कर रहे हैं लोग, लेकिन अल्टीमेटली टैक्स नेट में तो आते हैं, सो क्या वॉलंटरली आ जाएंगे? प्राइम मिनिस्टर की अपीलें उनको अपील कर सकती हैं या दबाव क्या चीज होगी आपके ख्याल में?
देखिए, जिस माशरे में आप 70 साल तक इन लोगों को रजिस्टर न कर सके और हर साल जो है ना बजट के बाद आप हर दफा कुछ न कुछ कोई ना कोई इंसेंटिव की बात या आप अगले साल करेंगे ये कह के ये मुमकिन नहीं होगा, शटर डाउन स्ट्राइक्स हो जाएंगी, ये होगा, ये सारी बातें करके हमने इसको अवॉइड करते रहे. सक्सेसिव गवर्नमेंट्स अवॉइड करती नहीं है. अब ये गवर्नमेंट को क्या ये गवर्नमेंट शटर पावर के सामने खड़ी रह सकती है? क्या ये दुकानदारों को मरूफ कर सकते हैं? क्या ये उनको रजिस्टर कर सकेंगे? तो मैं उसका जवाब आज आपको दे देता हूँ. जो कल मीटिंग हुई है इस्लामाबाद में, उसके अंदर 4 कैटेगरीज बना दी हैं दुकानदारों के साथ बैठकर, ए बी सी डी. जो ए है उसको तो बिल्कुल एग्जम्प्ट कर देंगे, बी है उसको जो है ना फिक्स टैक्स ले लेंगे दुकान की साइज के ऊपर, सी जो है उसको जो है ना वो रजिस्टर्ड है उसको एनटीएन से के साथ चलाएंगे, और जो डी है वो कैटेगरी वो एनटीएन भी लेगी और सिर्फ से रजिस्टर भी कराएगी. अब आप यही देखें सारा जो है ना गेन वैल्यू चेन. देखिए, हमारे यहाँ जो टैक्स का सिस्टम है, जिन जिन ममालिक में टैक्स में इम्प्रूवमेंट आई है वहाँ वीएटी मोड ऑफ टैक्स आया.
सो ये बेहतर है. आप एज बिजनेसमैन क्या सजेस्ट करते हैं, ये जिन 4 कैटेगरीज की आपने बात की है, सो ये बेहतर अप्रोच है?
देखिए, इसका मतलब ये दिखता है कि गवर्नमेंट लाचार है, आज भी लाचार है, आज भी वो घुटने टेक के उनके साथ वो कर रही है. हम ये कहते हैं, जैसे मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, मैं इनसे ये कहता हूँ कि आप अनरजिस्टर्ड लोग को वो काम ही नहीं करने देना चाहिए. अगर आपका ये देखिए, अगर जब आप टैक्स टू जीडीपी रेशियो की बात करते हैं, बहुत सारे हम लोग बड़े बड़े फिगर देते हैं, 9.34 यहाँ है और 12.5 इंडिया में है और 13% हो गया बांग्लादेश में. उसके अंदर आप फर्क देखें, फर्क ये है कि नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स. आप यहाँ, आपको बड़ा ताज्जुब होगा ये सुन के कि 74% टैक्स टू द जीडीपी रेशियो कम्स फ्रॉम द इंडस्ट्री. आप इसको देखिए कि आप इंडस्ट्री को क्रिपल कर रहे हैं और इसकी फ्रंट लोडिंग कर रहे हैं, इसके ऊपर इतने टैक्स डाल दिए हैं कि बाकी सारे सेक्टर्स नहीं, बाकी सर्विस एग्रीकल्चर सारों का मिला लें तो आपका जो है ना जो है 26% आता है. तो इज दिस फेयर? आपको इंडस्ट्री को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देना है, आपने कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग को इस मुल्क में नीचे लाना है अगर हमने इन्वेस्टमेंट करनी है. आपको पता है इमरान खान साहब से जब हम पूछते हैं तो उनका प्रीएम्बल क्या होता है, उनका शुरू इस तरह से करते हैं, आई वॉन्ट माई गवर्नमेंट टू बी रिकग्नाइज एज द मोस्ट बिजनेस फ्रेंडली गवर्नमेंट और आई फील दैट वेल्थ क्रिएशन जो ना होनी चाहिए तभी हम आगे बढ़ सकेंगे. लेकिन ये जो बजट आया है उसके अंदर 1500 अरब रुपए के नए टैक्सेस डाले और जो टैक्स नेट को बड़ा करने की तरफ कोई तवज्जो नहीं. अगर आप इन 22 लाख लोगों को, जिसमें से 13 लाख लोग सैलरी क्लास हैं, 8 या 9 लाख लोग जो है वो टैक्स पेयर हैं, अगर आप 1% से या 0.5% से अगर आप चलाना चाहते हैं, और इसमें भी जो सिग्निफिकेंट टैक्स पेयर हैं वो सिर्फ 1 लाख लोग हैं, जो 1 मिलियन या उससे ज्यादा रुपए का टैक्स देते हैं वो सिर्फ 1 लाख लोग हैं, तो कैन यू रन अ कंट्री ऑफ 220 मिलियन पीपल? आप जो है एक से आप टैक्स
so, बिल्कुल आप समझते हैं कि कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए, बिल्कुल रियासत को खड़े हो जाना चाहिए और जो टैक्स नेट में आता है उसे टैक्स लेना चाहिए. एक और भी बात है, वैसे ये कहते हैं कि पाकिस्तान एग्रीकल्चरल कंट्री, यानी जो सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है उसके ऊपर टैक्स नहीं है. एग्रीकल्चर को भले फैसिलिटेट करें लेकिन उसकी इनकम के ऊपर तो टैक्स अप्लाई होना चाहिए.
देखिए, मैं तो हर दफा कहता हूँ, किसी हर फोरम पे मैं कहता हूँ, चाहे प्राइम मिनिस्टर कोई बैठा हो, मैं कहता हूँ कि मैं ये नहीं कहता कि आप एग्रीकल्चर को टैक्स करें. एग्रीकल्चर को टैक्स नहीं करना चाहिए, फूड सिक्योरिटी के मामला में बहुत अच्छा है, इनको सब्सिडी भी देनी चाहिए, फर्टिलाइजर भी सस्ता देना चाहिए, लेकिन 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 जब आपने 6 लाख रुपए साल की इनकम के ऊपर टैक्स डाला है अर्बन एरियाज में, तो इनके ऊपर भी 6 लाख के ऊपर टैक्स होना चाहिए। 6 लाख के अंदर वालों को तो हम कहते ही नहीं, हम टैक्स एग्रीकल्चर को नहीं कर रहे, हम टैक्स इनकम
को कर रहे हैं। बिल्कुल,
टैक्सिंग योर इनकम इज द राइट ऑफ द लैंड, जो वहां रहते हैं आपको सारी मराज चाहिए, आपको सब कुछ चाहिए। आप देखिए, ये तो मुनासिब नहीं है जो इस वक्त हो रहा है, इसको हमने किसी सूरत में भी टैक्स नेट को बड़ा करना है, और टैक्स नेट जब तक बड़ा नहीं हो, देखिए इस मुल्क का पोटेंशियल जो है वो, आप डू यू थिंक हमारे यहाँ 59,000 लोग जो है वो सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड है, सिर्फ 59,000 होने चाहिए या 5,59,000 होने चाहिए, ये फैसला हमको करना पड़ेगा।
बहुत शुक्रिया।
इस मुल्क को आगे बढ़ाना है तो ये टैक्स टू जीडीपी रेशियो को बढ़ाने का वाहिद तरीका ये है कि आप जो है ना टैक्स नेट को बड़ा करें। और अभी उन्होंने जो इकदाम किए हैं, मैं इनको सराहता हूँ, कि जो 500 गज के मकान में रहता है
और वो भी टैक्स ले,
गाड़ी उसके पास है तो उसके लिए उसको रजिस्टर होना है।
बहुत शुक्रिया आपका जुबैर मोदी वाला साहब, आपने ज्वाइन किया। नादिया फारूक साहब आप हमारे साथ नहीं, वक्त की कमी वैसे सेगमेंट को मैं यहाँ पे पॉइंट अप करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया दोनों पैनलिस्ट का। सामिन, ये वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन एयर प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की जानब जाते हैं। स्पोर्ट्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप के बाद उसके असरात नजर आना शुरू हो गए हैं। चीफ सेलेक्टर ने इस्तीफा दे दिया, अगरचे वो अपनी मुद्दत मुकम्मल करने के बाद जा रहे हैं, लेकिन उनका कहा कि मैं एक्सटेंशन नहीं लूंगा। सोशल मीडिया पर और भी चीज़ें वायरल हो रही हैं, कैप्टन मुख्तलिफ फॉर्मेट के अंदर आने की, पता नहीं वो किस हद तक दुरुस्त हैं। या हुसैनी बाखबर जर्नलिस्ट हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं और स्पोर्ट्स एंकर भी हैं, उनसे बात करते हैं। या बहुत शुक्रिया। इंजमाम उल्लाह का इस्तीफ़ा और सोशल मीडिया पर कुछ क्या सराइयाँ या खबरें बाज क्रिकेटर्स के रेफरेंस से कि क्या तब्दीलियाँ आ रही हैं, कैप्टन बदल सकते हैं टेस्ट के अंदर बिलखसूस। सो क्या हो रहा है क्रिकेट के अंदर पाकिस्तान में, पोस्ट वर्ल्ड कप सिनेरियो क्या है?
असद, एक ड्रामा आप देखते हैं या फिल्म देखने के लिए सिनेमा हॉल पे जाते हैं, उसका एक डायरेक्टर होता है, उसका एक राइटर होता है। तो अगर मैं आसान लफ्जों में कहूं कि इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट में भरपूर अंदाज में ड्रामे जारी हैं, तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। आज अगर आप बात करते हैं इंजमाम उल हक के इस्तीफे की, तो इंजमाम उल हक का इस्तीफा जो था वो प्री प्लान था, क्योंकि इंजमाम उल हक को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने स्टेट अवे मना कर दिया था कि हम आपको कंटिन्यू नहीं करेंगे, और उनसे माजरत कर ली थी। तो आज इंजमाम उल हक ने फेस सेविंग के लिए जो है आकर मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया, वरना वो हाथ पांव चला रहे थे बिल्कुल उस डूबते हुए शख्स की तरह जो कि समंदर की गहराई में अपने आप को जाने से बचाने की कोशिश करता है। लेकिन जिस तरह उन्होंने ये कहा कि जी मैं पाकिस्तान क्रिकेट में मुस्तकबिल में किसी भी हैसियत में काम करने के लिए तैयार हूँ, तो सबसे बड़ा सवाल ये था कि अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट में किसी भी हैसियत में काम करने के लिए तैयार हैं, तो जिस काम आपने 3 साल किया है, आपसे ज्यादा बेहतर आदमी तो कोई था नहीं, तो आपने इस्तीफा क्यों दे दिया? तो बात दरअसल यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट इस वक्त बीच बजधार में है और मामला सुलझने के बजाय उलझते जा रहा है।
सही। सो अच्छा ये बताएं कि इंजमाम उल्लाह का तो एक तरफ हो गया, सोशल मीडिया पे ये भी चल रहा है दरोग पर गर्दन रावी कि शायद असद शफीक को टेस्ट कैप्टन बना दिया जाए और T20 और वनडे का कैप्टन जो है वो सरफराज को बरकरार रखा जाए। शुएब ज़ाहिर अपना आखिरी एक रोज़ा मैच खेल चुके, सो क्या कुछ तब्दीलियाँ टीम के अंदर एक्सपेक्टेड हैं, अप्रोच के अंदर, कोचिंग के अंदर? एंडी फ्लावर के बारे में कहा जा रहा है कि उनको चीफ कोच बनाया जा सकता है।
देखिए असद, इस वक्त जो पाकिस्तान क्रिकेट की गुड बुक है उसमें सरफराज भी शामिल है और मिकी आर्थर भी शामिल है, और पाकिस्तान क्रिकेट की जो इस वक्त सारी कहानी को लिखने वाले जो बंदे हैं वो हैं वसीम अकरम, जो माजी में भी खासे मुतनाज़ रहे हैं। उनका बहुत जगहों पर नाम आता रहा है, मैच फिक्सिंग में उनका नाम आया है, बहुत ज्यादा मुतनाज़ रहे हैं। रिचर्ड पाइबस को 2003 वर्ल्ड कप में वो लेकर आए थे, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोच डेव वॉटमोर को वो लेकर आए, मोहसिन खान को हटाने में उन्होंने किरदार अदा किया, हर क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के साथ वो मौजूद रहते हैं, और अब मिकी आर्थर के साथ भी उनका गठजोड़ है, क्योंकि मिकी आर्थर कराची किंग्स के कोच हैं, वसीम अकरम वहां पर प्रेसिडेंट हैं। तो अब बात दरअसल ये है कि जो आदमी 3 साल में डिलीवर नहीं कर सका, आपके क्रिकेट बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर वसीम खान साहब फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान अगले 1 साल कोई कोच आने के लिए तैयार नहीं है। तो वसीम खान साहब पहले ये तो बताएं कि पाकिस्तान कौन सा कोच आने के लिए तैयार नहीं है, कौन सा ऐसा बंदा है जिसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑफर किया था और उसने आने से मना कर दिया? मिकी आर्थर इस लेवल पर थे वर्ल्ड कप के बाद के, वो नेशनल क्रिकेट एकेडमी में छोटी सी जॉब हासिल करने के लिए भी तगोदौ कर रहे थे। उनकी जो एक्सटेंशन है वो इस एतबार से अहमियत की हामिल है कि उनको किसी इंग्लिश काउंटी ने घास नहीं डाली वो। दूसरी तरफ सरफराज अहमद का ये हाल है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट को एक ऐसे दलदल में लेकर जा रहे हैं, क्योंकि उनकी ना तो अपनी कारकर्दगी है, ना उनकी कप्तानी में कमांड है, उनकी अपनी टीम में जगह नहीं बनती, वो पाकिस्तान टीम को आगे कैसे लेकर जा सकते।
बहुत शुक्रिया याया हुसैनी, आपने हमें ज्वाइन किया, हमारे साथ मौजूद रहे। प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। प्रोड्यूसर अंजुम हेरल गिल और असद हसन को इजाजत दीजिए।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।
अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और कांग्रेस में उनके बेशतर रिपब्लिकन हलीफ मंगल के रोज अपना दिफा करते रहे, क्योंकि इससे पहले नाकदीन ने सदर ट्रंप की तरफ से समाजी राब्तों की वेबसाइट पर पोस्ट किए गए पैगाम पर तासुफ का इजहार करते हुए उन्हें नस्ल परस्ती पर मबनी बयानात करार दिया। सदर ने अपनी ट्वीट्स में चार डेमोक्रेट खवातीन कांग्रेस अरकान पर जोर दिया था कि वो अपने मुल्कों को वापस चली जाएं, क्योंकि वो अमरीका पर तनकीद करती हैं। ये तमाम अरकान खवातीन अमरीकी शहरी हैं, जबकि इनमें से तीन अमरीका ही में पैदा हुई। इस ताज़ा तरीन सूरतहाल ने मुल्क में नस्ली और सियासी तकसीम को गहरा कर दिया। वाशिंगटन से कौमी अमूर के लिए वॉइस ऑफ अमेरिका के नुमाइंदे जिम मलून की रिपोर्ट के साथ बहजत जलानी हाजिर खिदमत है। व्हाइट हाउस में महाजराई के मूड के साथ सदर ट्रंप अपने बयानात पर कायम रहे, जिसमें उन्होंने ऐवान नुमाइंदगान की चार डेमोक्रेट अरकान खवातीन पर जोर दिया कि अगर वो इस मुल्क में खुश नहीं तो इसे छोड़ दें।
You look at what they've said. I have clips right here. The most vile, horrible statements about our country, about Israel, about others.
सदर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि आप जरा ये तो देखिए कि उन्होंने क्या कहा है। मेरे सामने उनके बयानात हैं जो हमारे मुल्क इसराइल और दूसरे मुल्कों के बारे में दिए जाने वाले खौफनाक बयानात हैं। इसका दारोमदार उन्हीं पर है। वो जो चाहें वो कर सकती हैं। वो इस मुल्क को छोड़कर जा सकती हैं, वो यहाँ कायम कर सकती हैं, लेकिन उन्हें हमारे मुल्क से मोहब्बत करना चाहिए और इस मुल्क की भलाई के लिए काम करना चाहिए। ट्रंप के इस बयान का हदफ चार डेमोक्रेट गैर सफेद खवातीन हैं जो ऐवान नुमाइंदगान की रुकन भी हैं, जिस पर नाकदीन ने सदर पर तनकीद करते हुए उन्हें नस्ल परस्त करार दिया। सेनेट में डेमोक्रेट लीडर चक शूमर कहते हैं,
आई थिंक व्हाट प्रेसिडेंट ट्रंप डिड वाज जस्ट डिस्पिकेबल टू अपील टू द वर्स्ट।
सेनेटर चक शूमर कह रहे हैं कि मेरा ख्याल है सदर ट्रंप ने जो कहा वो अफसोसनाक है। इंसानी जबिलतों को बदतरीन अंदाज में बयान करना और अमरीका को तकसीम करना एक ऐसा अमल है जो पहले कभी किसी सदर ने नहीं किया। इसके अलावा डेमोक्रेट पार्टी के सदारती उम्मीदवारों ने भी अपनी नाराजगी का इजहार किया, जिनमें दौड़ में आगे जो बाइडन भी शामिल थे। वो आयोवा में अपनी इंतखाबी मुहिम में मसरूफ थे, जहां उन्होंने कहा,
In American history, has been as so openly
डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार जो बाइडन कह रहे हैं कि अमरीका की तारीख में ऐसा कोई सदर नहीं रहा जो इस हद तक खुल्लम खुल्ला नस्ल परस्त और मुनकसम मिजाज हो। जरा तसव्वुर कीजिए दुनिया में इस बारे में कैसे सोचा जाएगा। बाज़ रिपब्लिकन अराकीन ने भी मुखालफत की और सदर को मोर्दे इल्जाम ठहराया कि वो मुल्क को तकसीम करने की कोशिश कर रहे हैं।
I wish we'd have moved past it, but I'm afraid that with the comments that have been hurled back and forth, we're back into the
रिपब्लिकन सेनेटर मिट रोमनी ने कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि हम इस रवैये को खत्म कर सकते, लेकिन मुझे खौफ है कि ऐसे बयानात से हम उसी नौयत की तकसीम का शिकार हो रहे हैं जो हमारी कौमी रूह के लिए बेहद तबाहकुन है। दूसरे रिपब्लिकन अराकीन या तो खामोश रहे या फिर उन्होंने इस मामले से अलग रहने को ही तरजीह दी। सेनेट रिपब्लिकन लीडर मिच मैकोनल ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि तमाम अवामी शख्सियात अपने अंदाज़े बयान में नरमी लाएं।
Well, the president's not a racist. The president's not a racist. And I think the tone of all of this is not
सेनेटर मिच मैकोनल कह रहे हैं कि सदर नस्ल परस्त तो नहीं, लेकिन मेरे ख्याल में ऐसा लहजा मुल्क के लिए अच्छा नहीं। फिर भी सोचने की बात तो यह है कि इसकी बाजगश्त तमाम नजरियाती रुझानात में नजर आ रही है। न्यूयॉर्क से कांग्रेस रुकन अलेक्जेंड्रिया ओकासिया कोर्टिस उन चार अरकान में शामिल हैं जो सदर के बयान का हदफ हैं। वो अमरीकी अवाम पर जोर देती हैं कि उन्हें सदर के ऐसे हमलों से बददिल नहीं होना चाहिए।
Children across this country is that no matter what
कॉर्टिस का कहना है कि पहली बात जो मैं इस मुल्क के बच्चों को बताना चाहती हूँ वो ये है कि कतई नजर सदर ने जो कुछ भी कहा आपका इस मुल्क से एक ताल्लुक है और ये मुल्क हर एक से ताल्लुक रखता है। सदर और डेमोक्रेट्स के दरमियान ताज़ा तरीन महाजराई के बारे में इम्कान यही है कि आइंदा बरस की इंतखाबी मुहिम का नुक्ता आगाज होगा। ادھر امریکہ کے ایوانی نمائندگان نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس متنازع بیان کی مذمت میں قرارداد منظور کر لی جسے ڈیموکریٹ ارکان نے نسل پرستانہ قرار دیا۔ کانگریس کی چار غیر سفید ڈیموکریٹ خواتین ارکان کے بارے میں ٹرمپ کی ٹویٹس پر امریکہ میں کئی حلقوں کی طرف سے غم و غصے کا اظہار کیا گیا۔ صدر ٹرمپ کی ٹویٹس کے خلاف منگل کی شام ایوان نمائندگان میں مذمتی قرارداد پیش کی گئی جسے ایوان نے کثرت رائے سے منظور کر لیا۔ قرارداد کے حق میں 240 ارکان نے ووٹ دیا جبکہ 187 نے اس کی مخالفت کی۔ ایوان کے کل ارکان کی تعداد 435 ہے جن میں ڈیموکریٹس کی اکثریت ہے۔ ریپبلکن ارکان کی اکثریت نے امریکی صدر کے بیان کا دفاع کیا اور قرارداد کی مخالفت میں ووٹ دیا۔ بیجے جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔